ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी की पदमुक्ति सहित 3 अध्यादेश जारी। काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारों पर स्थित अतिक्रमित बस्तियों को हटाने का कार्य आज भी जारी। कमला नदी में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन बाढ़ में बहने से यातायात संचालन ठप। और जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का अमेरिका का निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज 1-7-3 अध्यादेश जारी किए हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आज राष्ट्रपति पौडेल ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ आईन में संशोधन अध्यादेश 2083, सार्वजनिक पदाधिकारी की पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 तथा विश्वविद्यालय संबंधी कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश 2083 जारी किए हैं। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार साक्य द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारों पर स्थित अतिक्रमित बस्तियों को हटाने का कार्य आज भी जारी है। संघीय सरकार और काठमांडू महानगरपालिका के समन्वय में आज काठमांडू महानगरपालिका 16 बालाजू स्थित विष्णुमती नदी और धोबी खोला नदी किनारे बने बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। काठमांडू के स्वयंभू बालाजू गोंगुबू बस पार्क देवीनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमित घर टहरों को हटाने का काम जारी है। ये जानकारी काठमांडू के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल ने दी। सरकार ने शुक्रवार को बलखू और कालीमाटी क्षेत्रों में नदी किनारे बसे जोखिम युक्त बस्तियों को हटाया था। अब तक काठमांडू उपत्यका में सरकारी सार्वजनिक और निजी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए लगभग 2000 बस्तियों को हटाया जा चुका है। ये जानकारी सहायक प्रमुख जिलाधिकारी रिजाल ने दी। बस्ती हटाने के दौरान प्रभावित परिवारों को होल्डिंग सेंटर में भेजा गया है, जबकि शहरी विकास मंत्रालय त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भूमिहीन परिवारों का विवरण संकलन कर रहा है। हुलाकी राजमार्ग के अंतर्गत सिरहा और धनुषा को जोड़ने वाली कमला नदी में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन के बाढ़ में बह जाने के बाद यातायात संचालन ठप हो गया है। निरंतर बारिश के साथ आई बाढ़ के कारण निर्माणाधीन पुल के विकल्प के रूप में अस्थायी रूप से बनाए गए इस डायवर्जन के आज सुबह बह जाने के बाद सैकड़ों वाहन और यात्री बीच रास्ते में फंस गए हैं। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी चेत राज बराल के अनुसार नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण पानी का स्तर घटने के बाद तुरंत ही बांध निर्माण का काम आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ दिन पहले भी बारिश से नुकसान होने के बाद मरम्मत कर डायवर्सन को फिर से संचालन में लाया गया था। कमला नदी पर पुल निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण स्थानीय लोगों को बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर कई घंटों का लंबा चक्कर लगाकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग का उपयोग करना पड़ता है। नारायणगढ़ बुटवल सड़क विस्तार योजना के अंतर्गत पूर्वी खंड के दाउन्ने में सड़क के एक तरफ ढलान का कार्य पूरा हो गया है। आयोजना के पूर्वी खंड के सूचना अधिकारी शिव खनाल के अनुसार पूर्वी खंड में दाउन्ने लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में पड़ता है, जहां एक तरफ की ढलान का काम पूरा कर लिया गया है। दाउन्ने में एक तरफ ढलान पूरा होने के साथ ही नारायणगढ़ बुटवल सड़क योजना के पूर्वी खंड का पूरा 65 किलोमीटर हिस्सा अब पीचिंग और ढलान से गया है। ये जानकारी सूचना अधिकारी खनाल ने दी। उन्होंने बताया कि एक तरफ ढलान पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस ढलान वाली सड़क से यात्रा शुरू की जा सकेगी। नारायणगढ़ बुटवल सड़क के कुल 113 किलोमीटर को 2 खंडों में विभाजित कर काम आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि पश्चिम खंड में अभी पूरी तरह ढलान का कार्य पूरा नहीं हुआ है। एशियाई विकास बैंक के ऋण सहयोग से चल रही सड़क विस्तार परियोजना की कुल लागत दोनों खंड मिलाकर लगभग 17 अरब रुपए हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबको यो विश्वास
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर्ड नेपाल की यात्रा पूरी कर वापस लौट गए हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के विषय में विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। ये जानकारी काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास ने दी। इन बैठकों में नेपाल के प्रविधि क्षेत्र में अमेरिकी व्यावसायिक अवसरों के विस्तार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केन्द्रित चर्चा हुई। उन्होंने नेपाली व्यवसायियों के साथ भी व्यावसायिक सहयोग के विषय में सार्थक विचार विमर्श किया। इससे पहले सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने और विशेष दूत सर्जियो गोर के बीच भी आज ही बैठक हुई थी। बैठक में दोनों के बीच नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। ये जानकारी विशेष दूत गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि नेपाल की नई सरकार को परिवर्तन के लिए बड़ा जनादेश मिला है और सरकार द्वारा घोषित सुधार योजनाएं आशाजनक है। उन्होंने आगे कहा कि वो आने वाले समय में नेपाल के साथ निकट सहयोग करने के लिए उत्सुक है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी मार्गशीर्ष में एकता राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी की आज हुई केंद्रीय कार्य संयोजक समिति की बैठक में आगामी मार्गशीर्ष से 11 से 15 गते तक काठमांडू में महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया गया। पार्टी ने आगामी श्रावण महीने के अंत तक सदस्यता नवीकरण और सदस्यता विस्तार अभियान चलाने का भी निर्णय किया है। भाद्र 15 तक वार्ड स्तर, भाद्र 16 से महीने के अंत तक पालिका स्तर, आश्विन के अंत तक जिला स्तर और कार्तिक 15 तक प्रदेश अधिवेशन पूरा किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला के अनुसार आगामी जेठ महीने के अंत तक केन्द्रीय प्रदेश, जिला, स्थानीय पालिका, वार्ड तथा टोल स्तर तक के संगठनात्मक और पार्टी तथा जनवर्गीय मोर्चा संगठनों का एकीकरण और समायोजन पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह बैठक में संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल भी गठन किया गया है। ये जानकारी प्रवक्ता ज्वाला ने दी। कृषि एवं पशु पंछी विकास वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा है कि मुक्त कवैया सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुक्त कवैया समाज जिला समिति कंचनपुर द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने कहा कि मुक्त कवैया हलिया हरवा चरवा तथा कमलरी के अधिकारों की लड़ाई में सरकार उनके साथ आगे बढ़ेगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमलसिन्हा ने कहा है कि सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी और टिकाऊ डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। आज राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस 2083 के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता और नागरिक सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रविधि अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। सरकार ने देश भर की सड़क सुरक्षा प्रणाली में नीतिगत और संरचनात्मक सुधार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गत गुरुवार रोलपा के थवांग गांवपालिका एक सल्यान में हुई जीप दुर्घटना में 20 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार ने कहा है कि दुर्घटना जांच समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने आज जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुर्घटना की सूक्ष्म जांच कर सत्य तथ्य सार्वजनिक करने के लिए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष और सुझावों को तुरंत लागू किया जाएगा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक कैलेंडर में सुधार करने के लिए अनियमित रूप से रुकी हुई परीक्षाओं को तेजी से आयोजित कर रहा है। त्रिवी के परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के अनुसार आगामी श्रावण से नियमित शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं संचालित करने के उद्देश्य से वर्तमान में अनियमित परीक्षाओं को लगातार लिया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक लक्ष्मण पौड़ल ने बताया कि शैक्षिक कैलेंडर को व्यवस्थित करने के लिए हर महीने 3 से 4 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जर्मनी से 5,000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। ये निर्णय ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मत्जर के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद सामने आया। दरअसल जर्मन चांसलर मत्जर ने कहा था कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका की बेइज्जती की है। जर्मनी में अमेरिका की सेना की बड़ी मौजूदगी है। पिछले दिसंबर तक वहां 36,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि सेना हटाने का आदेश रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से आया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कई देशों से नाराज है। ट्रंप ने इनसे हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के अभियान में मदद मांगी थी, लेकिन इस अभियान के लिए उन्हें समर्थन नहीं मिला। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी की पदमुक्ति सहित 3 अध्यादेश जारी। काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारों पर स्थित अतिक्रमित बस्तियों को हटाने का कार्य आज भी जारी। कमला नदी में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन बाढ़ में बहने से यातायात संचालन ठप और जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का अमेरिका का निर्णय। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।